ராமாயணம் நமோ லோயே சவத்ரிகாலவர்த்தி சாஹூ. ஈஸ்வரூப சம்ஜாவினா பாம்யோ துக்க அனந்த சம்ஜாவ்யோ தே பத நமோ ஸ்ரீ சத்குரு பகவன். மங்களாச்சரண கே ரூப் மே ஹம் யஹாம் யே சவையா டீகா பண்டித தீபச்சந்த் ஜி ஷாஹ் காஸ்லிவால் கி உஸ்கே பத சே மங்களாச்சரண கர் ரஹே ஹே. गुण एक एक जाके पर जे अनंत करे पर जे में अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है नृत्य में अनंत थट नृत्य में अनंत कला कला में अखंडित अनंत रूप धरियो है रूप में अनंत सत सत्ता में अनंत भाव भाव को लखाव हुआ अनंत रस भरियो है रस के स्वभाव में प्रभाव है अनंत दीप सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है। इसमें थोड़ा ये सुधारना है, नृत्य में अनंत थट और थट में अनंत कला, ये नृत्य नहीं होना, थट चाहिए वहां। नृत्य में अनंत थट और थट में अनंत कला, थट माने घाट। हाँ वो नृत्य रिपीट होगी। हम यहाँ पर 47 शक्तियों की मीमांसा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जिन 175 बोलों का रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पारायण करते थे, उनमें ये 47 शक्तियों का प्रमुख स्थान है। जो 175 बोल हैं, उनमें 47 शक्तियां हैं, 47 नए हैं, 20 अलंग ग्रहण के बोल हैं, 6 अभ्यक्त के बोल हैं, 16 समय सार की गाथाएं हैं, 10 श्रीमद राजचंद के ये बोल हैं और 24 तीर्थंकरों के नाम और 5 बाल्यती के नाम शामिल हैं। एक प्रश्न है आपसे, इनमें से कितने बोल आत्मा से संबंधित हैं? इसमें 24 तीर्थंकरों के और 5 बाल्यती तीर्थंकरों के अलावा ये तो परमात्मा से संबंधित हैं, ये आत्मा के नहीं है, ये परमात्मा के बोल हैं। और इनको छोड़कर बाकी सारे बोल आत्मा से संबंधित हैं। 47 शक्तियों की बात करो तो आत्मा की बात है, 47 नयों की बात करो तो आत्मा के 47 धर्म हैं, जिनको बताने वाले ये 47 नए हैं उसमें भी आत्मा की बात है। समय सार की 16 गाथाएं आत्मा के गीत गा रही हैं, ये श्रीमद राजचंद के 10 बोल स्वद्रव्य अन्य द्रव्य भिन्न भिन्न और बहुत बाद के बोल तो बहुत ही मार्मिक हैं। स्वद्रव्य ना व्यापक त्वराथी थाओ, स्वद्रव्य ना रक्षक त्वराथी थाओ, त्वराथी माने ये बोल भी आत्मा से संबंधित है। अब क्या रह गए, 6 अव्यक्त के बोल वो आत्मा के हैं, 20 अलिंग ग्रहण के बोल वो भी आत्मा के हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा भी अलिंग ग्रहण है, आत्मा अलिंग ग्रहण है ना, तो उसी अलिंग ग्रहण आत्मा के 20 बोल हैं, इसलिए सारी बात इसमें आत्मा 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 की है। 175 बोलों में यदि आप परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंट आत्मा का है और कितना परसेंट परमात्मा का है? तो मैंने इसका जोड़ घटाना भाग गुणा किया था, गुणा भाग, इसमें 1/6 बोल परमात्मा की, कितने बोल 1/6, और कितने हो गए 5/6 हो गए ना, 5/6 जो है वो आत्मा की, 80% से ज्यादा हो गया सर, लगभग 83-84% बोल, 83% बोल जो है वो आत्मा के हैं। ये गुरुदेव श्री का रेशो है। और एक बात विचार करता हूं कि 24 तीर्थंकरों के जो जब नाम आ गए तो ये 5 बालियती के अलग से क्यों उसका स्मरण करना, 24 तीर्थंकरों में 5 बालियती नहीं है क्या, तो फिर 5 बालियतियों का अलग से स्मरण क्यों है। मुझे एक ऐसा लगता है, मजाक भी हो सकता है, कि गुरुदेव श्री बाल ब्रह्मचारी थे ना, इसलिए उनको बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर ज्यादा पसंद थे। इसलिए 24 तीर्थंकरों में यद्यपि 5 बालियतियों का भी समावेश है, लेकिन उनका विशेष रूप से अलग से उल्लेख करना, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बालियतियों का 24 तीर्थंकरों में भी स्मरण करा और फिर 5 बालियतियों का अलग से स्मरण किया, तो डबल डबल स्मरण हो गया उनका। एक हमारे यहाँ न्याय में ऐसा एक सूक्ति आती है कि क्षत्रिया आयाता सूरवर्मापि, ऐसा बुलाया कि निमंत्रण दिया, बोले भैया सारे जितने भी छत्री हैं नगर में उन सबको हमारे यहाँ निमंत्रण है, जितने छत्री हैं सबका निमंत्रण है। फिर ऐसा कहने के बाद बोले कि सूरवर्मा की, ये राजा साहब जो है ना सूरवर्मा, इनको इनका भी निमंत्रण है। तो कोई खड़ा हो गया हमारे जैसा, बोले साहब जब आपने ये कह दिया छत्रिया आया था, सब छत्री आ गए हैं, सब छत्रियों को आना चाहिए, तो ये सूरवर्मा को अलग से क्यों कह रहे हो, ये भी तो छत्री हैं, तो छत्री में ये नहीं आए क्या, बोले आ गए। लेकिन इनका विशेष उल्लेख करने जैसा है, सारे छत्री तो सामान्य हैं, लेकिन राजा जो है सूरवर्मा वो विशेष हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों में 5 बालियती भगवान जो हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, स्मरणीय है, इसलिए उनका विशेष रूप से गुरुदेव श्री उनका स्मरण करते थे। 47 शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, 10 शक्तियां हमने कल, 10 शक्तियों पर चर्चा हमने कल करी है, पेट भरा नहीं है लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, रमणीक भाई पुश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताना ये चाहता हूं, अपने भरत भाई आए हैं आज, कि हमने भाई साहब ये 47 शक्तियों में मेरी आपसे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि 3 दिन हो गए और हमने एक बात आपके सामने रखी थी, इन शक्तियों का हम 4 प्रकार से बंटवारा करते हैं, लेकिन किसी ने ये प्रश्न ही नहीं पूछा कि ये बंटवारा आपने क्यों किया। कोई प्रश्न तो ऐसा पूछता तो मैं उसका समाधान करता। लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं प्रश्न, तो अब मैं खुद ही कर देता हूं, आपके आपके ऊपर से भरोसा उठ गया है कि आप कब पूछोगे और कब मैं उत्तर दूंगा, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, वो इंतजार नहीं बनता है। देखना, हमने इन शक्तियों को जो बंटवारा किया है वो 4 ऐसे बंटवारा किया, अमृत चंद्राचार्य ने खुद किया है बंटवारा, उन्होंने 8 शक्तियों में लक्षणा शक्ति ऐसा प्रयोग किया, लक्षणा जीवत्व शक्ति, लक्षणा आपकी स्वच्छत्व शक्ति, लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। 9 शक्तियों में उन्होंने आत्मिका शब्द का प्रयोग किया है, आत्मिका माने जैसे अजड़त्वात्मिका है ना, तो ये आत्मका शब्द का प्रयोग किया है। और 15 शक्तियों में उन्होंने मई शब्द का प्रयोग किया है, अनाकार उपयोग मई, साकार उपयोग मई, मई शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से 15 शक्तियों में उन्होंने रूपा शब्द का प्रयोग किया है, रूपा का मैंने आपको उदाहरण दिया था, शायद 5वीं शक्ति में है, अनाकुल नहीं वो तो लक्षणा है, रूपा है 6वीं में है, छठवी में है सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, ये रूपा शक्ति है, हैं वीर शक्ति, हाँ सॉरी वीर शक्ति, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, ये रूपा शब्द का प्रयोग है, उसमें भी शायद रूपा है ना, सर्व भाव व्यापक में भी रूपा है ना, विभुत्व शक्ति में भी, आठवीं है उसमें भी रूपा शब्द है। मैं आपको ये कह रहा हूं लक्षणा, जो ये आत्मा की लक्षणा शक्तियों के माध्यम से उन शक्तियों का उल्लेख है कि जो जिनको हम आत्मा का लक्षण बना सकते हैं, जैसे उपयोगो लक्षण, ये उपयोग लक्षण है आत्मा का। हमको यदि आत्मा तक पहुंचना है, पहचानना है आत्मा को, तो हम लक्षणा शक्तियों के माध्यम से आत्मा को पहचान सकते हैं। उपयोग जो है ये बाहर उपयोग हमको दिखाई देता है, ये उपयोग की डोर को पकड़ करके हम ऐसा पकड़ पकड़ के चलें, केड़ाए तो है ना, जैसे आचार्य भगवंतों के केड़ाए तो हैं, यदि उनकी पगडंडी पर चलें, हम उपयोग की पगडंडी पर चलें, तो हम आत्मा को पकड़ सकते हैं। इसलिए ये लक्षणा शक्ति जो है इनके द्वारा हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ये आत्मा का पहचान कराती है। दूसरी जो है वो आत्मिका शक्ति है। आत्मिका शक्ति का अर्थ ये है कि ये शक्तियां आत्मा की आत्मा हैं। क्या हुआ? ये शक्तियां जो हैं, ये आत्मा की आत्मा हैं। आत्मा का मतलब जो है माने वो उसका सर्वस्व है, सब कुछ है, हार्ट भी कह सकते हैं आप, मतलब वो जो है आत्मिका, अजड़त्व आत्मिका, माने ये आत्मा का स्वरूप शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, मैं स्वरूप शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्वरूप को मैं रूपा में ले जाऊंगा, इसलिए ये उसकी आत्मा है। अभी क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने, अभी बोला था आपको आत्मिका शक्ति है ना, तो ये इस आत्मक शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, जड़ात्मक, तो आत्मक जो है ये उसकी आत्मा है। पुद्गल की आत्मा मालूम है आपको क्या है? पुद्गल की आत्मा, पुद्गल की आत्मा क्या है? जड़पना, ये पुद्गल की आत्मा है। आप बोलोगे साहब आत्मा में आत्मा रहती है, जड़ में भी आत्मा रहती है ना, पुद्गल जड़ात्मक है, मैंने उसका वो स्वरूप भी हम कह सकते हैं यहां पर समझने के लिए, लेकिन मैं स्वरूप को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। इसके बाद में जो 15 शक्तियां हैं वो मई शक्तियां हैं। मई शक्तियों से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिनसे आत्मा तन्मय होती है, जिनसे आत्मा तन्मय हो जाता है, वो तन्मयता जो है वो मई। वैसे आप ये ज्यादा घबराना इसलिए मत कि एक में दूसरे का भी समावेश है, ऐसा कुछ नहीं, मुख्यता हम कर रहे हैं क्योंकि लक्षणा शक्ति कही ना, तो लक्षणा की मुख्यता है, बाकी आप मई पना, आत्मिका पना और रूपा पना उसमें गौण है। ये रूपा शक्ति है तो उसमें रूपा पना मुख्य है और लक्षणा पना और बाकी पना वो गौण है, इसलिए उसमें सब में सब है, इतना माने ज्यादा उसकी बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा विचार करने के लिए आपको इसमें बिंदु मिल सकता है कि इसको रूपा क्यों कहा, इसको मई क्यों कहा। अनाकार उपयोग मई, माने वो आत्मा जब अनाकार दर्शनोपयोग रूप हो होती है तो वो उससे तन्मय हो जाती है, मई। साकार उपयोग मई, जो कारक की शक्तियां हैं सारी, भरत भाई कारक की जितनी शक्तियां हैं वो सब मई शक्तियां, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्त्री शक्ति, कर्म शक्ति, कर्म शक्ति पहले, कर्म शक्ति, कर्त्री शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, संबंध शक्ति, स्वभाव मात स्वस्वामी संबंध मई, सारी कारक शक्तियां मई शक्तियां हैं। अब आप बोलोगे रूपा शक्ति क्या है? रूपा, रूपा शक्ति जो है इसके माध्यम से आत्मा का एक रूप बनता है। रूप शब्द वैसे
ये जड़ रूपी न है पुद्गला, वो वहां मत जाना आप। ये स्वरूप से रूप का, रूप शब्द को आप समझ सकते हैं, माने इसमें हमको एक आत्मा का एक रूप दिखाई देता है। जैसे रूपा शक्ति का एक उदाहरण है भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये सारी शक्तियां रूपा शक्तियां हैं। भूतावस्थत्व रूपा कौन सी शक्ति? भाव शक्ति। शून्यावस्थत्व रूपा माने इसमें अवस्था शब्द की प्रधानता है, माने जो आत्मा की अवस्थाएं हैं वो एक प्रकार से आत्मा के रूप हैं। रूपा शब्द में स्वरूप नहीं भी डालो तो चलेगा, स्वरूप को आप आत्मिका में डाल दो, ये रूप है आत्मा का एक। जैसे मति ज्ञान रूप परिणमित हुआ आत्मा, तो ये मति ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन मति ज्ञान आत्मा का एक रूप जरूर है। मति ज्ञान के रूप में आत्मा कुछ समय के लिए जब मति ज्ञान रूप से परिणमित होता है तो वो मति ज्ञान रूप दिखाई देता है। तो ये रूपा शक्तियों के माध्यम से हम उसका उसकी थोड़ी पहचान कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया है, आप भी थोड़ा और विचारना, मैं भी थोड़ा और विचारूंगा, फिर कभी अपन और इसकी चर्चा करेंगे। अब हम चल रहे हैं लक्षणा शक्ति, ग्यारहवीं शक्ति भी लक्षणा शक्ति है। ये जो ग्यारहवीं शक्ति है, और दूसरी बात अभी बताऊं आपको थोड़ा, नौवीं दसवीं शक्ति जो है वो कौन सी शक्तियां हैं? वो मई शक्तियां हैं। मई शक्तियां क्यों है बताओ? ये तो रूप मानना चाहिए था इसको, सर्वदर्शी, ये आत्मा का एक रूप है, सर्वज्ञ ये आत्मा की एक अवस्था है ना, तो ये तो इस आत्मा का एक रूप है, आप रूपा शक्ति कहते इसको। बोले थी तो रूपा, सर्वदर्शी पना आत्मा का एक रूप था, सर्वज्ञ पना आत्मा का एक रूप था, लेकिन उसको मई बना दिया। कैसे बना दिया मई? आत्मदर्शन मई, आत्मज्ञान मई। माने क्यों मई बन गया? कि अब वो जब आत्मज्ञान से हो गई ना आत्मज्ञान, तो वो आत्मा आत्मा से तन्मय नहीं होगा। आत्मा ने आत्मा को जाना तो वो आत्मा ने आत्मा को तन्मय होकर के जाना। आत्मा ने सबको, सारे लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जाना, जाना आत्मा ने, ज्ञान ने सारे लोकालोक को जाना, यहां तक तो आप कह सकते हो, लेकिन इसको तन्मय होकर के नहीं जाना। इसलिए ये सर्वज्ञता जो है ये व्यवहारने का विषय बन गई, और आत्मज्ञता जो है वो निश्चयने का विषय बन गई, क्योंकि आत्मा आत्मा को तन्मय होकर के जानता है, और आत्मा लोकालोक को जानता है, जानता है, स्वभाव है सुपर प्रकाशक, अब जानने में आ जाता है तो जान लेता है। और जानता क्या है? ये जो स्वच्छत्व शक्ति है ना, इसमें झलकता है। क्या बोला? आत्मा लोकालोक को नहीं जानता ऐसा कहो तो नियम सार के अनुसार कोई दोष नहीं। क्या बोला? आत्मा निश्चय से लोकालोक को नहीं जानता ऐसा कहो तो कोई दोष नहीं है। उत्तम चंद जी ने बताया था, और व्यवहार ने से और व्यवहार ने से आत्मा आत्मा को नहीं जानता ऐसा कहो तो भी कोई दोष नहीं है। क्यों? ये आत्मा को तुम वैसा बना रहे हो जैसा लोकालोक, आत्मा लोकालोक को जानता है इसके लिए भी कह रहे हो जानता है, और आत्मा आत्मा को इसको भी कह रहे हो जानता है। अरे कुछ फर्क तो करो भाई, आत्मा को भी जानता है और लोकालोक को भी जानता है, ऐसा नहीं चलेगा। एम ना चले फिर कैसा चलेगा? व्यवहार से माने जैसे लोकालोक को जानता है आत्मा, वैसे आत्मा आत्मा को जानता है कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं नहीं जानता। क्या मतलब नहीं जानता? अरे जिससे तन्मय होकर के जानता है उसको तुम जानता है कह रहे हो? ये छोटा शब्द है जानता है, वो आने वाली है। देखना ये जो ग्यारहवीं शक्ति है भाई साहब, ये जो ग्यारहवीं शक्ति है ये व्यवहार नय का विषय, और निश्चय नय का विषय कहां है? जो बारहवीं शक्ति है वो निश्चय नय से है। क्यों? क्योंकि ग्यारहवीं शक्ति तो ये कह रही है, स्वच्छता बता रही है आत्मा की, और वो स्वच्छता में सारा लोकालोक झलकता है ये बता रही है ये स्वच्छत्व शक्ति। बारहवीं शक्ति ये कह रही है, देखो बारहवीं शक्ति पढ़ो, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्ति मई। देखो मई शक्ति है ये, स्वच्छत्व शक्ति है लक्षणा और प्रकाश शक्ति है मई। क्यों? क्योंकि स्वसंवित्ति मई आत्मा में जब अतींद्रिय आनंद आता है तो आत्मा में मजा आ जाता है, आत्मा उससे तन्मय हो जाता है। केवली भगवान नरक को देखते हैं, नारकियों को देखते हैं, सारे लोकालोक को देख रहे हैं, नारकियों को भी देख रहे हैं। भगवान आपने वो नरक देखा? हाँ देखा। सातवां नरक देखा? हाँ देखा। लेकिन आपके चेहरे पर शिकन नहीं है, आपने कैसे देखा? बोले मेरे को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, ये सातवें नरक में उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो यदि सूक्ष्म राग भी होगा वो आत्मा को, आत्मा को यदि सूक्ष्म राग भी होगा तो वो तकलीफ देगा, और वो नारकियों का ऐसा कष्ट ऐसा महादुख ये वीतरागी परमात्मा को कुछ नहीं होता। और सूक्ष्म राग भी हो दसवें गुण स्थान का तो वो सालता है, सालता है, वो साला शब्द का आता है ना, उसमें कोई गीत में आता है साला शब्द का, फांस फांस, वो फांस सालती है ना। तो ये सूक्ष्म राग भी ये तकलीफ देता है, भले ही वो चेहरे पर शिकन दिखे चाहे नहीं दिखे, शुद्धोपयोग में है ना मुनिराज, इसलिए वो शुभ सूक्ष्म लोभ में उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक वो सालता है, दुख देता है। जहां तक राग है वो दुखदाई है, भले ही वो सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म रूप से देगा, थोड़ा है तो थोड़ा दुख देगा, लेकिन देगा दुख मई। ये स्वसंवित्ति मई है, स्वयं प्रकाशमान। वाह, देखो तुलना करना आप, थोड़ा तुलना, मैं इनको ये दोनों शक्तियों को एक जोड़ा बनाता हूं, ये स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति का जोड़ा है, जैसा निश्चय व्यवहार का जोड़ा है ना, ऐसे ये जो है ये दो शक्तियों का जोड़ा है, स्वच्छत्व और प्रकाश का जोड़ा है। स्वच्छत्व यदि उसका बहिरंग रूप है, स्वच्छत्व यदि उसका बहिरंग रूप है तो प्रकाश उसका अंतरंग स्वरूप है। मई स्वसंवित्ति मई, एक बात बताऊं आपको मैं, ये जो स्वसंवित्ति लक्षण कहो, ये स्वसंवित्ति लक्षण आत्मा का नहीं है। क्या मतलब? ये जो है ना स्वसंवित्ति आत्मा का, मतलब आत्मा को है, लेकिन प्रत्येक आत्मा को है, सभी आत्माओं के पास में ये स्वसंवित्ति लक्षण है, लेकिन सबका अपना अपना प्राइवेट। क्या रजनी भाई नहीं आया? सबका अपना अपना प्राइवेट है ये, बिल्कुल प्राइवेसी, जिसको अपन बोलते हैं ना, वो अपन लिखे रहते हैं ना कुछ प्राइवेट मैटर, और वो कुछ लिख देते हैं ना कमरे के बाहर, कॉन्फिडेंशियल नो एडमिशन, वो जो है ये स्वानुभूति, स्वानुभूति जो है ये आपका प्राइवेट मैटर है, क्या अंगद है, अंगद अंगद। क्यों क्यों कह रहा हूं, आपने कैसी स्वानुभूति करी, केवली भगवान आपकी स्वानुभूति को जान तो सकते हैं लेकिन आपकी स्वानुभूति को अनुभव नहीं कर सकते, केवली भगवान भी नहीं है समर्थ उसके, केवली भगवान भी इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो हमारी अनुभूति को जान तो सकते हैं कि कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, लेकिन वो हमारी अनुभूति को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अनुभव में और ज्ञान में, अनुभव अनुभव की बात कर रहा हूं, अनुभव की बात कर रहा हूं। आप क्या बोल रहे हैं, अभी तो ग्यारहवीं बारहवीं छोड़ो, आप तो पहले अनुभव और ज्ञान का फर्क समझ लो। अनुभव और ज्ञान का फर्क है, अनुभव जो है एक व्यक्ति एक आत्मा दूसरी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, ये अंगद मैटर है,
पर्सनल,
बिल्कुल पर्सनल। माने आप अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो लेकिन आपकी आत्मा के अनुभव में केवली भगवान डोंट डिस्टर्ब, केवली भगवान उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, केवली भगवान उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती और ना वो जान सकते हैं, जान सकते माने अनुभव नहीं कर सकते, जान तो सकते अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, ये किसकी बात है बोलो, ये सब आत्माओं की बात नहीं है, ये मेरी आत्मा की बात है, क्योंकि मुझे मेरा आत्मा सिर्फ स्वानुभूतिया चकासते, मेरी आत्मा का अनुभव आप नहीं कर सकते। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, ये जो स्वानुभूतिया चकासते विशेषण है और भी जगह बहुत जगह दिया है, 33वीं गाथा है प्रवचन सार की, उसमें एक लक्षण दिया है स्वसंवेद्यमान, स्वसंवेद्यमान, ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। किस बात पर, कि मेरे पास में कुछ ऐसा है, मेरे पास में कुछ ऐसा है जिसमें जिसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अनुभव भी है तो सबका अपना अपना पर्सनल है, अलग अलग है। चलो आप इस पर थोड़ा विचार करना, ग्यारहवीं शक्ति कह रही है निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान, देखो प्रकाशमान शब्द दोनों जगह है, प्रकाश शक्ति में भी प्रकाशमान है और ये स्वच्छत्व शक्ति में भी प्रकाशमान है। यहां पर क्या प्रकाशमान है, यहां पर निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान है, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान। निरूप माने क्या, निरूप माने रूप रहित, निरूप अरूपी भी अपन कहते हैं उसको, इसको और दूसरी भाषा में आप कहें अमूर्तिक कह सकते हैं आप इसको, निरूप माने अमूर्तिक, टोडामल जी ने शब्द का प्रयोग किया है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये आत्मा के जो प्रदेश है ना ये अमूर्तिक हैं, ये निरूप आत्म प्रदेश, ये जो आत्मा के प्रदेश हैं ये निरूप हैं, इनका जैसा पुद्गल का रूप दिखाई देता है ऐसा ये आत्मा के प्रदेशों का ऐसा रूप दिखाई नहीं देता। एक अपने हेमचंद जी ने एक आपको गाथा कोट की थी, शायद प्रवचन सार की थी या कौन सी गाथा कोट की थी, उन्होंने उन्होंने कहा था ना कि केवली परमात्मा भी, हम ये कहते हैं कि साहब केवली परमात्मा को तो प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं और हमारे को जो है हमारे को प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, हम तो छद्मस्त है ना, तो हमको आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते और केवली परमात्मा को तो आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष होते, माने जैसे उनको आंखों से है ना वो आत्मा के प्रदेश ऐसे प्रत्यक्ष दिखाई देते होंगे और हम देख रहे हैं खूब घूर घूर के तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा अर्थ नहीं है। एक तो आंख का रोल ही नहीं है केवली परमात्मा को लेकिन उनके आत्मा के प्रदेश तो अमूर्तिक है ना, तो वो प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, तो क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उनका जो ज्ञान है, केवली भगवान के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। इसका मतलब क्या है बताओ, प्रत्यक्ष और परोक्ष का? न्याय ग्रंथ इसका बहुत अच्छा जवाब देता है। न्याय ग्रंथ इसका जवाब देता है, प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा? तो बोले प्रत्यक्ष की परिभाषा है विशदम प्रत्यक्षम। क्या मतलब? विशदम प्रत्यक्षम। और परोक्ष क्या है? अविशदम परोक्षम। उनने वो परिभाषा बनाई नहीं। कौन सी? कि इंद्रिय ज्ञान से होता है वो परोक्ष है, इंद्रिय ज्ञान के बिना होता है वो प्रत्यक्ष है, वो परिभाषा नहीं बनाई। उन्होंने क्या कहा? विशदम, जो जहां जितना विशद है, जो जहां जितना विशद है, विशद माने स्पष्ट, जो जहां जितना क्लियर है, क्लियर एकदम साफ, जो जहां जितना क्लियर है वो प्रत्यक्ष है, और जो जहां जितना क्लियर नहीं है, विशद नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो वहां वो उसकी अपेक्षा वो परोक्षता है। इसलिए केवल ज्ञान के सामने अवधि ज्ञान और मनह पर्यय ज्ञान भी परोक्ष माने गए। क्या? केवल ज्ञान के सामने ये अवधि ज्ञान और मनह पर्यय ज्ञान भी परोक्ष हैं। क्यों? अल्पज्ञ हैं, उनको इतनी स्पष्टता नहीं है जितनी स्पष्टता वो केवली परमात्मा को है, ऐसी स्पष्टता उनको नहीं है। लेकिन उनको हम क्यों प्रत्यक्ष कहते हैं? वो उनको हमारे से अच्छा प्रत्यक्ष है ना, हमारे से मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। बाकी केवल ज्ञान की तुलना में केवल ज्ञान जैसी प्रत्यक्षता होती है, ऐसी प्रत्यक्षता अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान में नहीं होती है। ये आत्मा में ये स्वच्छता क्या कर रही है? ये आत्मा में ये स्वच्छता क्या कर रही है भैया? ये आत्मा की स्वच्छता जो है उसके ज्ञान में है, उसके ज्ञान में ये स्वच्छता है। और उसके ज्ञान में जो स्वच्छता है वो क्या कर रही है? उसके ज्ञान में इतनी स्वच्छता है कि सारा लोकालोक मानो उसकी स्वच्छता के सामने, मानो उसकी स्वच्छता के सामने पूरा लोकालोक जैसे क्या बोलते हैं वो, जैसे बहुत भीड़ मच गई हो ना, सिनेमा पहले लगते थे ना सिनेमा ट्रैकीज में, तो वो पहले दिन का पहला शो है तो उसमें भयंकर भीड़ मस्ती थी ना, हाउसफुल तो टिकट अभी खत्म तो होने दो, अभी तो इस खिड़की खुली नहीं, तुम हाउसफुल बोल रहे हो क्या बोला? उसमें ये कह रहा हूँ, एडवांस बुकिंग नहीं यार, उसमें जो कह रहा हूँ उसमें भीड़ मस्ती है। ऐसे ही आत्मा के जो ज्ञान में जो स्वच्छता है, इसमें सारा लोकालोक का जितना गेय है, जितना गेय है, वो भीड़ मचाता है कि इनकी स्वच्छता में मैं कब पहले घुस जाऊं, कब पहले मैं घुस जाऊं, कब मैं पहले घुस जाऊं। देखना दो दो शक्तियां हैं आत्मा, दो गुण है, दो गुण कौन कौन से मालूम आपको? एक तो है ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण का काम क्या है? उसका काम ये है कि सारे लोकालोक को जानना, इसका काम तो जानने का है। और दूसरा कौन सा गुण है बताओ, इसके सामने कौन सा गुण है? नहीं अभी आप सामान्य गुणों में है, वो प्रमेयत्व गुण है। ये प्रमेयत्व गुण और ये ज्ञान गुण में क्या फर्क है बताओ आप? ये जहां आत्मा में ये गुण है कि ये सारे लोकालोक को जाने, एक एक द्रव्य को जाने, उसके एक एक गुण को जाने, उसकी एक एक पर्याय को जाने, उसके अविभागी प्रतिच्छेदों को जाने, ये ज्ञान में जहां ये गुण है वहां ये सारे लोकालोक में, उसके लोकालोक के एक एक द्रव्य में, उसके एक एक गुण में, उसकी एक एक पर्याय में, उसके एक एक प्रदेश में, उसके एक एक अविभागी प्रतिच्छेद में, ये प्रमेयत्व नाम का गुण है ज्ञान कहता है मैंने जान लिया, ज्ञान की तरफ से कहो तो ज्ञान कहता है मैंने जान लिया, और प्रमेयत्व कहता है यदि मैं मना कर देता कुछ नहीं होता, फिर मैं मना कर देता था। इसलिए ये प्रमेयत्व का और प्रमाण का जोड़ा है, ज्ञान और ज्ञेय का जोड़ा है। प्रमेयत्व शक्ति माने ज्ञेयत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति माने प्रमाण, प्रमाण शक्ति, प्रमाण गुण कहो ज्ञान गुण कहो, और उसके सामने वो प्रमेय है। प्रमाण की जोड़ी प्रमेय के साथ में, ज्ञान की जोड़ी ज्ञेय के साथ में। ज्ञेयों ने भी इतना ओपन हार्टेड है, ज्ञेय भी इतने ओपन हार्टेड है कि हमने भी कुछ नहीं छिपाया है, आओ तुम जान लो, आओ तुम जान लो। और ज्ञान कहता है कि मैंने भी कुछ नहीं छिपाया है, जिसको आना है आ जाओ। ये ऐसी ये शक्ति है, कौन सी शक्ति है ये? ये स्वच्छत्व शक्ति है। ये स्वच्छत्व शक्ति भी खूब प्रकाशमान है। आपके दर्पण में, आपके दर्पण में बहुत स्वच्छता हो, बहुत स्वच्छता हो, लेकिन बाहर घोर अंधेरा हो, क्या करेगा तुम्हारा दर्पण? सब झलकेंगे उसमें, कच्छु नहीं झलक रहा। इसलिए कैसा होना चाहिए उसको? कैसा होना चाहिए उसको? प्रकाशमान। कैसा होना चाहिए उसको? प्रकाशमान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान जो है, ज्ञान में प्रकाश अलग से नहीं चाहिए। यहां लोक में तो गे पदार्थ हैं और प्रकाश एक अलग चीज है, प्रकाश दूसरी चीज है और पदार्थ दूसरी चीज है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, प्रकाश का और पदार्थों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब वो पदार्थ जानने में आते हैं, वो झलकते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो चराचर पदार्थ, ऐसा इनका कॉम्बिनेशन है। लेकिन आत्मा में ये ज्ञान में क्या होता है, तो आप यहां भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्या कॉम्बिनेशन है? ये ज्ञान का और ये स्वच्छता का, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्वच्छता में प्रकाश कहां से आया बोलो? प्रकाश तो चाहिए ना, स्वच्छता अकेले से क्या होता है, प्रकाश भी तो चाहिए। तो इसमें क्या है, ये जो आत्मा की स्वच्छता है, इसमें इनबिल्ट, इनबिल्ट समझ गए ना? इसमें क्या है, इसमें इनबिल्ट, इसमें प्रकाश शामिल है। क्या मतलब? स्वच्छता लो और प्रकाश मुफ्त में लो, बाई वन गेट वन फ्री। क्या बोला? ये जो स्वच्छता है ना, ये देखो लिख रहे हैं आचार्य, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान। वाह, आत्म प्रदेश प्रकाशमान। क्या फायदा हुआ इससे? इससे ये फायदा हुआ कि लोकाकार, लोक के जितने आकार हैं और अलोक के जितने प्रदेश हैं, अब आकार तो बोल नहीं सकते लोक, इसमें आकार कहा है, लेकिन लोक के भी आकार कहा, अलोक का भी आकार कहा, आकार नहीं है अलोक का, प्रदेशत्व गुण है क्या नहीं उसमें? यदि प्रदेशत्व गुण है तो आकार तो होना चाहिए ना, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, तो ये अलोकाकाश का भी आकार है। कौन सा आकार है बताओ जरा? गोल है कि त्रिकोणा है कि चौकोना है कि षटकोना है? कौन सा आकार है बताओ? घबराना मत, मेरे को भी नहीं मालूम। अरे निरूप, निरूप है, निरूप, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोका लोकाकार। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेच कोप योग लक्षणा, ये मेचक शब्द है, मेचक। बोलो और कहां आया ये मेचक शब्द? कहां आया? सोमेसार में। कहां आया? समयसार में। ये सोलवी गाथा जो है ना, उसके आजू बाजू में जो कलश हैं, आत्मनश्चिंत यैवालं मेचिका मेचिकत्वयो, ऐसा है ना, सोलवा कलश है शायद, कलश भी सोलवा है, गाथा भी 16 है और कलश भी 16 है, नहीं ये वाला कलश शायद 19 है। आत्मनस चिंत यही वालम, आत्मा की चिंता से बस हो। कैसी चिंता से बस हो? कि आत्मा मेचक है कि अमेचक है, आत्मा मेचक है कि अमेचक है। अरे गेहों की तरफ से देखो तो आत्मा मेचक ही है, और ज्ञान की तरफ से देखो तो आत्मा अमेचक ही है। तो साहब फिर मैं क्या मानूं? तू चुप हो जा, बिल्कुल चुप। चुप कैसे? चुप हो जा। आत्मनश्चिंत यही वालम, तू आत्मा की चिंता से बस हो। कि मेचक है क्या मेचक? तुमने बताया तो नहीं, तुमने बताया तो नहीं मेचक है क्या मेचक। अरे बता तो दिया मेचक भी है, और बता तो दिया अमेचक भी है, तो मैं मेचक मानूं कि अमेचक? चुप, जान खाता है। आत्मनश्चिंत यही वालम, तू आत्मा की चिंता से बस हो जा। मेच का मेचकत्व ये हो, उसमें बहुत अच्छा है। और आगे क्या जवाब दिया पंडित जी? दर्शन ज्ञान चारित्री त्रित्व में, ऐसा कुछ है?
साध्य सिद्धि न चान्य
था। हाँ ऐसा कुछ, दर्शन ज्ञान चारित्री साध्य सिद्धि न चान्य था। दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है। तू ये जो ज्ञान में जो मेचक अमेचक बना है इसकी चिंता से बस हो। तू दर्शन ज्ञान चारित्र कर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर, तेरी साध्य की सिद्धि हो जाए। छोड़ चिंता, छोड़ चिंता, वो मेचक अमेचक की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दे कि आत्मा मेचक है कि अमेचक है। यहां पर जो मेचक कहा जा रहा है वो मेचक क्यों कहा जा रहा है? मेचक माने क्या होता है पहले ये तो बताओ, मेचक माने क्या होता है? मेचक माने होता है अनेकाकार, आपने कहा। इसको थोड़ा साहित्यिक भाषा में कहें तो मेचक कहते हैं चित्र विचित्र को। किसको कहते हैं मेचक? जिसका चित्र विचित्र वर्णमन होता है ना,
कलरफुल है।
कलरफुल पंडित जी साहब दो नजर, ये चित्र कैसा है आप बताओ? ब्लैक एंड व्हाइट है कि रंगीन है? ये जो रंगीन है ना, रंगीन, आप जैसे रंगीन कह रहे हो उसको कहते हैं मेचक। लेकिन यदि ये ब्लैक एंड व्हाइट ही अकेला अमेचक नहीं होता, यदि ये चित्र जो है, अच्छा ये बताओ ये मेचक है क्या मेचक? ये मेचक नहीं है, ये एक ही कलर का है। भले ये रेड है, कौन सा है कलर? ये मैजेंटा है, एक ही कलर है, तो ये मेचक नहीं कहलाएगा। मेचक कौन सा कहलाएगा? ये मेचक कहलाएगा जिसमें काला भी हो, जिसमें लाल भी हो, जिसमें हरा भी हो, जिसमें सफेद भी हो, जिसमें थोड़ा सा उसका अंश भी हो, थोड़ा सा उसका अंश भी हो, थोड़ा सा इसका अंश भी हो। ये जो हमारा चित्र है ना, ये मेचक है। क्या मेचक क्यों कह रहे हैं? आत्मा के स्वच्छत्व शक्ति में, स्वच्छत्व शक्ति में आत्मा के उपयोग को मेचक कहा जा रहा है। आप ये बाकी का छोड़ दो। इस स्वच्छत्व शक्ति क्या कह रही है? स्वच्छत्व कह रही है मेच को उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति, बाकी को अपन बाद में विचार करते हैं। मेच को उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति माने ये जो स्वच्छत्व शक्ति है इसमें ये उपयोग है, उपयोग लक्षणा है, ये उपयोग लक्षण वाली है। लेकिन ये उपयोग लक्षण वाली कैसी है? कि ये इसका उपयोग जो है मेचक हो रहा है। बड़ी बड़ा कॉम्बिनेशन, बहुत जोरदार है इसका कॉम्बिनेशन। क्या है कॉम्बिनेशन? ये कह रहा है कि शक्ति कौन सी है? स्वच्छत्व शक्ति, और वो कैसी है? मेचक है। क्या बोले साहब ये पानी कैसा है? बोले एकदम स्वच्छ है। और कैसा है? बोले बहुत मैला कुचैला है। बोले ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई, स्वच्छ पानी और मैला कुचैला, ये कैसे होता? नहीं यार, ये मेचक जो है उसको रंगीन बना रहा, और स्वच्छता जो है वो ये कह रही है कि मेरा तो कोई कलर ही नहीं है। ये इसीलिए इसको मेचक, मेचक पना जो है इसका स्वच्छता में ही मेचक पना है। और यदि कोई रंगीन पानी हो, देखना आप जिस, जैसे मेरा व्हाइट पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, उसमें आप कोई भी कलर मिलाओ तो आपका कलर का इफेक्ट आएगा। लेकिन मेरा पहले से लाल लाल पानी है, आप उसमें कोई दूसरा कलर मिलाओगे तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा बताओ? जो कलर आप मिलाओगे वही इफेक्ट आपको मिलेगा? लाल पानी है और उसमें आप काला काला रंग मिलाओ तो बोलो इफेक्ट काला मिलेगा कि ब्राउन मिलेगा? अरे मैंने तो काला मिलाया था, ये ब्राउन कैसे हो गया? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये पदार्थों को, ये जो स्वच्छत्व शक्ति है ना, ये जैसा का तैसा दिखाती है। पुद्गल है तो पुद्गल दिखाती है, जीव है तो जीव दिखाती है, धर्म है तो धर्म दिखाती है, अधर्म है तो अधर्म दिखाती है। ये पुद्गल दो दो अणु का है, द्विअणु का है तो द्विअणु दिखाती है, त्रिअणु का है तो त्रिअणु दिखाती है, जैसा है वैसा दिखाती है। अन्योन मन अतिरिक्तम, ये इसकी क्या है? जैसा का वैसा कैसे दिखाती है? ये जैसा का वैसा ये स्वच्छ होने के कारण दिखाती है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो उस जैसा। ये स्वच्छ पानी की बात है, ये आत्मा की ये स्वच्छता है कि उसमें जो है जैसा पदार्थ है वो वैसा दिखाई देता है। इसलिए पदार्थ तो बड़े चित्र विचित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में स्वच्छता है ना, जैसा आप करो जैसा पदार्थ होगा ये बिल्कुल वैसा दिखाएगा, ये स्वच्छत्व शक्ति है। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान, लोका लोकाकार, नेच कोपयोग लक्षणा, स्वच्छत्व शक्ति है। ऐसी ये स्वच्छत्व शक्ति है। चलो अपन आगे चलते हैं। बारहवीं शक्ति जो है वो है प्रकाश शक्ति। देखो स्वच्छत्व शक्ति प्रकाशमान है। स्वच्छत्व शक्ति प्रकाशमान है और प्रकाश शक्ति अलग से है। आप ऐसा भी कह सकते हो ये प्रकाश शक्ति का रूप आ गया स्वच्छत्व में। अमृत चंद्राचार्य ने इसमें जो जो बात बताने की कोशिश की है ये शक्तियों के माध्यम से, वो ये बताने की कोशिश की है कि ये आचार्य ये जो आत्मा है ये कैसा है, ये आत्मा कैसा कैसा है, कैसा है अकेला नहीं, एक वचन हो जाएगा, ये आत्मा कैसा कैसा है, ये आत्मा के रूप कैसे कैसे हैं, ये आत्मा की सामर्थ्य कैसी कैसी है, इसके कुछ ये उदाहरण हैं 47 शक्तियों के माध्यम से। आत्मा की तो अनंत 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 गुणों की जब चर्चा गुरुदेव श्री करें तो 5 बार अनंत शब्द का प्रयोग करें बोल करके, अनंत 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 अनंत, ये क्या बता रहे हैं आत्मा के, ये आत्मा के गुण बता रहे ना, तो ये 5 नंबर का अनंत होता है, अनंत इंटू अनंत इंटू अनंत इंटू अनंत इंटू अनंत, 5 अनंत का इंटू है, जीव अनंत उससे अनंत गुणे पुद्गल उससे अनंत गुणे आकाश, 3 काल के समय उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश उससे अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण। इसलिए गुरुदेव श्री बोलते हुए भी इसको 3 बार 5 बार अनंत बोले, ये तो बहुत जगह उनका ये प्रयोग आप देखना, ये अब किताबें छप गई है इसमें तो आपको मिलेगा मिलेगा है, देखा ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक और दूसरी मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं। देखो बहुत सारे वक्ता है ना यहां पर, उत्तम चंद जी साहब हैं, अभय जी हैं, हेमचंद जी हैं, ये प्राइमरी सूत्र है, ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो इस सूत्र की। क्या सूत्र बताना चाह रहा हूं मैं कि हम यहां से बोलेंगे व्यवहार नैसे, सूत्र है साहब, हम यहां से बोलेंगे व्यवहार नैसे और तुम समझना। क्या बोला? हम यहां से बोलेंगे व्यवहार नैसे लेकिन तुम व्यवहार, खबरदार खबरदार कि तुम उसको व्यवहार नैसे समझो, तुमको समझना है निश्चय नैसे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि आत्मा की शक्तियां अनंत हैं, तो तुम आत्मा की शक्तियां अनंत हैं ये नहीं समझना, फिर तुम क्या समझना बाबू भाई? तुम ये समझना कि आत्मा अनंत शक्तियों का अभेद अखंड पुंज है। ये परमार्थ की बात है, माने तुम आत्मा की शक्तियों का ऐसा भेद मत समझना। ये तो हम उस आत्मा की अभेद महिमा बताने के लिए उसमें भेद करके हम ये सब बता रहे हैं कि आत्मा ज्ञान वाली आत्मा, दर्शन वाली आत्मा, जीवत्व वाली आत्मा, चित्ती वाली आत्मा, दृशी वाली आत्मा, सुख वाली, और तुम अकेले एक एक वाली, सुख वाली, चित्ती वाली, जीवत्व वाली, ऐसी आत्मा को मत समझना। यदि तुम ऐसा समझोगे, यदि तुम ऐसा समझोगे, हम बताएंगे क्रम, बताने में तो क्रम आएगा ना, बताने में तो क्रम आएगा ना, हम ऐसा बताएंगे और यदि तुम भी ऐसा ही समझ लोगे तो इसमें आत्मा का घात हो जाएगा, आत्मा नष्ट हो जाएगी। आत्मा एक एक शक्ति वाली नहीं है, जो अनंत शक्तियों का पुंज है। अब उसको बताने के लिए हम व्यवहार ने से ऐसा क्रम करके और एक एक करके बताते हैं, और ये आत्मा में ऐसे अनंत गुण ऐसे बिखरे पड़े नहीं है। आत्मा के आत्मा जो है वो अनंत गुणों की अभेद अखंड एक एक सत्ता है, ये एक रसात्मक है, अनंत गुण उससे बिल्कुल एक रूप है। ये भी कहते हैं व्यवहार में, क्या कहते हैं, कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि इससे जो है वो वहां पर अनंत गुणों का आत्मा के अंदर अनंत गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो ऐसा वहां पर कुछ घमासान मचा रहता होगा, खबरदार तू मेरी बाउंड्री में आ गया, ऐसा वहां कुछ घमासान नहीं मचा हुआ है। वो तो इतने एक मेक हो रहे हैं, एक रसात्मक हैं, एक अभेद अखंड सत्ता है। हम भेद से कहेंगे लेकिन तुम भेद से नहीं समझना। ये तो ये क्यों बता रहे हो फिर आप भेद करके? ये तो हम आत्मा की महिमा आज तक आई नहीं, और हम अभेद 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 अभेद, देखो वक्ता अभेद अभेद कहने लगे। सुनो, वक्ता यदि भेद से ना समझाए तो श्रोताओं को कुछ समझ में नहीं आएगा, और यदि वक्ता ही अभेद 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 करने लगे तो तुम थोड़ी देर और करना, तुम अभेद करते रहना, हम भोजन करने चले जाएंगे, हम आते, आप अभेद करो, अभेद अभेद अभेद, और आंख बंद कर लेना, जब आंख खुलेगी मैदान साफ। क्यों पुलिस साहब? वो अभेद हो गई, हमको भी अभेद अनुभूति, इसलिए वक्ता को तो भेद से समझाना होता है, और वो भेद से समझाना होता है, वो महिमा करने के लिए समझाना होता है, वो आत्मा की आपको भेद रूप महिमा नहीं कराने के लिए बताया जा रहा है। आप आत्मा की भेद रूप महिमा नहीं करना, आप आत्मा की अभेद अखंड एक रस उसकी महिमा करना, उसकी महिमा आ जाए, बस वो निर्विकल्पता है। समझाया जाएगा विकल्प से, समझना निर्विकल्प। क्या समझना है, क्या समझने के लिए बैठे हैं? विकल्प समझने के लिए बैठे हैं कि निर्विकल्प को समझने के लिए बैठे हैं? निर्विकल्प को समझने के लिए बैठे हैं, तो तुम विकल्प से क्यों समझाते हो? क्यों समझाते हो विकल्प से? क्योंकि कोई इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आठवीं गाथा आएगी उत्तम चंद जी की, क्या बोल रहे हैं देखो। अब ये प्रकाश शक्ति बहुत प्यारी शक्ति है, स्वयं प्रकाशमान विशत, ये प्रत्यक्ष की है, प्रत्यक्ष स्वयं का प्रत्यक्ष हो रहा है, ये विशदम प्रत्यक्षम न्याय का सूत्र है। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। प्रकाश शक्ति का काम लोकालोक को प्रकाशित करने का नहीं है। प्रकाश शक्ति का काम यह सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा का संवेदन करने के लिए ये सुरक्षित है। ये शक्ति काय के लिए सुरक्षित है? सारे लोकालोक को जानने के लिए। कितने पदार्थ हैं लोकालोक के? कितने पदार्थ हैं? एक तरफ हमारा आत्मा और एक तरफ पूरे लोकालोक के पदार्थ। उन लोकालोक के पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए कुल मिलाकर के एक शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, और दूसरी तरफ आत्मा। उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ये पूरी की पूरी प्रकाश शक्ति को उसको सौंप दिया। विशद स्वयं प्रकाशमान, विशद स्वसंवित्तिमयी। गुरुदेव कहते थे एक और गांव और एक और आत्मा राम। पूरे गांव को जानने के लिए स्वच्छत्व शक्ति, और आत्मा राम को जानने के लिए, क्योंकि ये स्वसंवित्तिमयी है, दूसरी आत्मा को नहीं जानती प्रकाश शक्ति। क्या बोला? ये दूसरी आत्मा फिर कहां जानी जाएंगी भैया? वो सब स्वच्छता का काम है, वो स्वच्छता में जानी जाएंगी सारी दूसरी आत्माएं, दूसरे दूसरे द्रव्य सब वो काय में जाने जाएंगे, स्वच्छता में जाने जाएंगे। प्रकाश शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ कैसी है और बताऊं मैं आपको? प्रकाश शक्ति कह रही है तुम आत्मा को जानो मत। क्या करोगे? अनुभव करो। ये स्वसंवित्तिमयी है, जो जो काम उसको दिया है ना, अनुभव करने के लिए कहा है, तुम अनुभव करो बस। कहीं पर भी इसमें जानने का उल्लेख नहीं है। स्वयं प्रकाशमान, विशद स्वसंवित्ति। और ये देखो विशद शब्द का प्रयोग क्यों है मालूम आपको? ये प्रत्यक्ष के लिए। क्यों? क्योंकि जो संवेदन होता है वो प्योर प्रत्यक्ष होता है। संवेदन प्रत्यक्ष होता है। किसको? किसको? सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, पंचेंद्री हो, एकेंद्री हो, जो हो सो हो। क्योंकि ये जो संवेदना है, ये संवेदना दूसरे को हो ही नहीं सकती। संवेदना अपनी संवेदना अपने को खुद होती है। ये स्वसंवित्तिमयी है। इसलिए जो कितना इसको कितना प्राइवेट मैटर बनाया, इसको प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान, विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। इसके बाद की जो है ना, मैं आपको नाम बता देता हूं, थोड़ा सा उसकी भूमिका बना देता हूं। इसके बाद में पांच शक्तियों का एक जोड़ा है। पांच शक्तियों का एक जोड़ा है। कौन सी पांच शक्तियां हैं? असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, और अगुरु लघुत्व शक्ति। इस पांच शक्तियों का जोड़ा है। जोड़ा क्या है? माने ये बिल्कुल अलग अलग हैं। एक का दूसरे, जैसे वो स्वच्छत्व का प्रकाश के साथ में जोड़ा था, सर्वदर्शी का सर्वज्ञत्व के साथ में जोड़ा था, प्रभु का विभू के साथ में जोड़ा था, ज्ञान का दर्शन के साथ में जोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन ये जो है, ये पांचों शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका किसी का कोई से जोड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इन पांच का ही एक जोड़ा बना दिया साहब। जिनका किसी के साथ में कोई जोड़ा नहीं है, उन पांच शक्तियों का एक जोड़ा। माने आपको याद करने के लिए मैं आपको आखिरी दिन ये 47 शक्तियां पूरी याद कराऊंगा विद इन ए फाइव मिनट। 5 मिनट में आपको 47 शक्तियां याद हो जाएंगी पक्के में। क्यों? क्योंकि उसको जिस ढंग से हम याद करेंगे, हो सकता है क्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको ये 47 शक्तियां याद हो जाएंगी। मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा। देखो मालूम इसमें क्या है, कुछ दो दो शक्तियों के जोड़े, कुछ तीन शक्तियों के जोड़े हैं भाई साहब, कुछ चार शक्तियों के जोड़े हैं, कुछ पांच शक्तियों के जोड़े हैं, कुछ छह शक्तियों के जोड़े हैं, कुछ सात शक्तियों के जोड़े हैं। सात शक्तियां कौन सी हैं? आप एक मिनट में याद कर लोगे। छह शक्तियां कौन सी हैं? आप एक मिनट में आप बता दोगे। पांच कौन सी हैं? बस यही याद करना है आपको। ये तो अलग अलग है ना। ये पांच शक्तियां आपको थोड़ा सा याद करने में आएगा दिक्कत। और चार शक्तियां कौन सी हैं? वो भी आपको मालूम है, दर्शन ज्ञान सुखवीर। और तीन शक्तियां कौन सी हैं? तीन शक्तियों के जोड़े कौन से हैं? वो तीन शक्तियों के जोड़े आएंगे अभी 20, 21, 22। अमूर्तत्व शक्ति, अगुरु लघु अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, ये तीन शक्तियों का एक जोड़ा है। इसको दो में जान डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं वहां, कर्तृत्व भोक्तृत्व। ये अमूर्तिक लेकिन अकेला वो बिचारा। तो आपको ऐसे जो है या 11 शक्तियों के दो दो के जोड़े कितनी हो गई? 22। एक तीन का कितनी हो गई? एक चार का कितनी हो गई? एक पांच का, एक छह का, एक सात का। चलो अभी समय हो गया है, अपन इसकी चर्चा विशेष रूप से फिर से करेंगे। Thank you.